मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। दोस्तों आइए आज शुरुआत करते हैं मुख्य विषय के रूप में पीएलआई स्कीम के बारे में और इसके बाद फिर कैबिनेट के द्वारा लिए गए उन दो महत्वपूर्ण निर्णयों को थोड़ा थोड़ा जानेंगे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट मालूम पड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पीएलआई स्कीम से। पी यानी कि प्रोडक्टिव, एल यानी कि लिंक्ड, आई यानी कि इंसेंटिव। मैं बार बार अक्सर ये बताने की कोशिश करता हूं कि जो संज्ञाएं होती हैं, जो नाम होते हैं, उन नाम में ही उनके गुण छिपे हुए होते हैं। अगर उन नाम पर आप थोड़ी देर रुककर विचार करें तो ढेर सारी बातें उसी से स्पष्ट हो जाती हैं। अब आप देखिए, यह है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादन हो रहा है, यह अर्थशास्त्र का विषय है। उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है? कोई उद्योग उत्पादन कर रहा होगा, तो उद्योग उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्टिव। लिंक्ड यानी कि उससे जुड़ा हुआ, उत्पाद से जुड़ा हुआ। इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब है प्रोत्साहन। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो, अगर नहीं भी रहे हैं तो सामान्य तौर पर भी आपने शायद सुना होगा प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस। ये पहले से खूब चलता आ रहा है, प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस। शायद इससे आपको इसका जो अर्थ है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ कंपनियां या जो उद्योग हैं वो इस तरीके से बोनस देने का एक तरह से फार्मूला तैयार करती हैं। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ लेबर्स हैं तो आप इतना जो प्रोडक्शन करेंगे तो इतने प्रोडक्शन के बदले में तो हम आपको वेजेस दे रहे हैं ना, वेतन दे रहे हैं आपको, मजदूरी दे रहे हैं। जब आप इससे अधिक उत्पादन करने लगेंगे तो आप जितना उत्पादन करेंगे उस उत्पादन के अनुपात में हम आपको बोनस देंगे। इसका मतलब है कि जितना काम आप कर रहे हैं उसका तो हम दे ही रहे हैं, अब जब अधिक काम करेंगे तो हम आपको प्रोत्साहन देंगे उसका। ऐसा नहीं है कि उसके बदले में हम चुप बैठे रहेंगे। तो दोस्तों, ये प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव कुल मिलाकर के यही है कि उत्पादन से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन। अगर आपने रेडियो न्यूज सुना हो, और रेडियो न्यूज ध्यान से सुना हो, ये बहुत जरूरी है ध्यान से सुनना, तो उसमें बकायदे कुछ बड़े खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करके बताया गया है कि ये प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम है क्या। देखिए उसमें कितने खूबसूरत और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। उद्योग लगाओ, प्रोडक्शन करने के लिए पहले तो आपको उद्योग लगाना पड़ेगा। उद्योग लगाओ, और लगाने के बाद क्या है, यानी कि लगाने के बाद बैठ गए और ताला लगा दिया, प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर करो, चीजें बनाओ, तो प्रोड्यूस करो। और इसके बाद प्रोड्यूस करने के बाद क्या है कि फिर एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, हम उसका निर्यात कर सके। रोजगार क्रिएट करो, जब आप उद्योग लगाएंगे तो आप रोजगार क्रिएट करेंगे। और ये सब करने के बाद इंसेंटिव लो, प्रोत्साहन लो। बहुत क्लियर हो गया? तो सीधी सी बात है कि आप अगर इसे पारिभाषिक रूप में करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उत्पादन की एक निश्चित मात्रा है, ठीक है, जब आप उस निश्चित मात्रा से, तय सीमा से आप कह लीजिए, अधिक उत्पादन करेंगे। इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो इसके जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उसमें पहला तो यह है कि एक निवेश की सीमा रखी गई है कि आपकी आपका निवेश इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्री हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिसे हम कहते हैं, उनके लिए रखा गया है 10 करोड़ रुपए के निवेश पर, कि 10 करोड़ रुपए का आपका अगर निवेश है तो आप 4 से 7% तक इंसेंटिव ले सकते हैं। और जो बड़े उद्योग हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश, तो उस पर 4 से 6% तक का उनको इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। एक सीमा हो गई निवेश, और दूसरा यह है कि इतना प्रोडक्शन तो आपको करना ही है, और जब इससे अधिक आप प्रोडक्शन करेंगे तब फिर गवर्नमेंट आपको कुछ छूट देगी। अब आप देखें कि जब यह छूट देगी तो उससे हो क्या जाएगा। इसमें मैंने अभी शुरू में निर्यात शब्द का इस्तेमाल किया था कि आप एक्सपोर्ट करें, तो इसमें होगा यह कि हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं एक वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं और जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में उसे बेचने जाता हूं तो मेरा अपना प्रॉफिट मिला करके, टैक्सेस वगैरह सब मिला करके, वो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपए में बिकती है, 100 रुपए में वो बिक रही है, राइट। लेकिन जो चाइना का सामान है या दूसरे देश का सामान, जो वही सामान है जब उसी मार्केट में भेजा जाता है, तो उसकी लागत आती, वो जो सामान है वो बिक रहे 95 रुपीज में। तो सीधी सी बात है कि अब मेरे सामान को कोई क्यों खरीदेगा, क्योंकि 95 में ऑलरेडी उनको सस्ते में अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट क्या कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं, आप उसको 100 रुपए में ही बेचिए, आप वहां 95 में बेचिए, 94 में बेचिए, तो उसको तो नुकसान होगा, मैं क्यों बेचूंगा, मुझे तो 100 रुपए में बेचना है। तो सरकार कहेगी कि उसकी भरपाई हम कर देंगे ना, हमसे उतना पैसा ले लीजिएगा। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन अनदर वर्ड्स एक अलग किस्म की ये सब्सिडी है, लेकिन उस तरह के नहीं है कि आपको मिलती रहेगी। प्रोडक्टिव लिंक्ड, यानी कि आपको प्रोडक्शन करके दिखाना होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड है, बकायदे रिजल्ट ओरिएंटेड है ये। आपने अगर बजट में ध्यान दिया हो तो बजट में बकायदे इसके लिए व्यवस्था की गई है, प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम की व्यवस्था की गई है। और जो कैबिनेट ने जो अभी निर्णय लिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यह निर्णय लिया है टेलीकॉम क्षेत्र के लिए, जो टेलीकॉम हमारी जो इंडस्ट्री है, तो अगर कोई उद्योग जो टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है और नेटवर्किंग, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों का आयात करता है और निर्यात करता है, हम कभी कभी आयात करने का मतलब है कि कच्चा माल आयात करता है, लेकिन यहां आयात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, निर्यात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टेलीकॉम उत्पाद और नेटवर्किंग उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें यह इंसेंटिव दिया जाएगा, और इसके लिए बकायदे 12,195 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब आप देखिए कि थोड़ा सा यदि आप इसे और एक्सटेंड करना चाहें तो अभी हम खासकर दूर संचार और जो नेटवर्किंग उत्पाद है उसके आंकड़े हमारे पास है कि हम एक साल में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का आयात करते हैं, 50,000 करोड़ रुपए का। अगर यही जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं इनका प्रोडक्शन हम करने लगे तो 50,000 करोड़ रुपए तो हमारी ये बच सकते हैं, और हो सकता है कि हम निर्यात करने की स्थिति में आ जाएं। तो अगर आप इसे और थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो क्या यही मेक इन इंडिया नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे कि ठीक है वहां तो इंसेंटिव मिलेगा तो हमारे यहां निवेश बढ़ सकता है, हमारे यहां जो ऑलरेडी निजी क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं वो इस क्षेत्र में आ सकते हैं कि नहीं इसमें इंसेंटिव मिल रहा है, इसमें निर्यात होने की संभावना है तो इस क्षेत्र में काम करो। और जब हम आयात को कम करेंगे और निर्यात को बढ़ाएंगे तो क्या यही आत्मनिर्भर भारत नहीं है, यही आत्मनिर्भर भारत है। तो दोस्तों ये अलग से आपके दिमाग में दर्ज होना चाहिए कि ये जो PLI स्कीम है ये क्या है। हमारे जो कैबिनेट है उसने दो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक बात मैं आप लोगों से यहां कहना चाहूंगा कि हिंदी में मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद शब्द के लिए, वो कहीं कहीं मंत्रिमंडल की जगह मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद की जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कर बैठते हैं, क्योंकि उनको मंडल और जो परिषद है एक तरह से पर्यायवाची जैसे लगते हैं, उस रूप में तो पर्यायवाची हैं लेकिन यहां नहीं है। देखिए कैबिनेट का मतलब है मंत्रिमंडल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है जितने भी हमारे मंत्री हैं वो सब के सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं, लेकिन कैबिनेट के मेंबर सारे मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। कैबिनेट के मेंबर वही मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें कैबिनेट रैंक दिया जाता है या फिर जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, उनको अपने विषय के जब बात हो रही होती है तो उनमें उसमें आकर के कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेने की अनुमति होती है। तो ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों दो निर्णय और लिए गए हैं महत्वपूर्ण निर्णय एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला यह है कि जो किशोर न्याय देखभाल एवं बाल संरक्षण एक्ट हमारा 2015 है उसमें थोड़ा सा अमेंड करने क्या निर्णय लिया गया है, ये एक्ट है याद रखिए, और उसमें यह दिया गया है कि खासकर जो किशोर की देखभाल करते हैं इस तरह की कमेटीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अलग तरह की एजेंसियां होती हैं, तो अब ये जो एजेंसियां हैं जो किशोरों की देखभाल करती हैं वो उनकी देखभाल या उनकी निगरानी करने का दायित्व तो अब कलेक्टर और अपर कलेक्टर को दिया गया है। आप कह सकते हो कलेक्टर्स को दे दिया गया है। यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाते हैं, कहीं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, कहीं वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहलाते हैं, डीसी कहलाते हैं, जो भी नाम आपके जिले में हो, तो जिला प्रमुख जो है उसे ये अधिकार दिया जाएगा कि वह बकायदे इन एजेंसी की निगरानी करे। लेकिन याद रखिए ये एक्ट है, यानी कि कैबिनेट ने अभी डिसीजन लिया है, ये बकायदे पार्लियामेंट में आएगा और फिर पार्लियामेंट इसे पारित कर देगी। पारित तो कर ही देगी, क्योंकि देखिए सरकार किसकी होती है, जिसके बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है उसी की सरकार होती है। तो एक प्रक्रिया है कि पहले उसे कैबिनेट पारित करती है। ये क्यों ऐसा होता है यहां मेरे लिए बताना संभव नहीं है, लेकिन जो मेरे लेक्चर्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। जो अगला जो निर्णय है और आखिरी निर्णय वो है दोस्तों कि मॉरिशस के साथ अब भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौता ये किया है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये किया है। इसमें होता यह है कि फिर दोनों देश एक दूसरे के यहां से जो आयात निर्यात करते हैं उसमें बहुत ज्यादा छूट दी जाती है, या मुक्त व्यापार समझौता जैसा कुछ होता है, टैक्सेस वगैरह बहुत कम हो जाते हैं। और इसके तहत भारत जो है 310 वस्तुएं मॉरिशस को भेजेगा और जो मॉरिशस है 615 वस्तुएं भारत को भेजेगा, ये समझौता हुआ है। बस ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिए, ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें थी और कुछ तथ्य जो मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए गए हैं। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हर बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उसमें जो सरकार के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे सजेस्ट करूँगा कि खासकर बुधवार की रात में जो खबरें आती हैं उन्हें तो आप ध्यान से सुने ही, और फिर ये देखें कि मंत्रिमंडल ने क्या क्या निर्णय लिए हैं और उनमें से जो निर्णय हैं कौन कौन से आपके सिलेबस से मैच करते हैं। और जो निर्णय आपके सिलेबस से मैच करते हैं अगर आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उन्हें नोट कर लें, तो इससे आपका वह जो टॉपिक है वह टॉपिक अपडेटेड हो जाता है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।